اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد. حضرتان امام گلستان ہند بمبئی کی فورتھ مجلس ہے، ہسٹری آف ہولی پلیسز. قرآن مجید کی یہ مشہور آیت کہ جس میں اللہ اعلان کر رہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اس کا فیوریٹ ریلیجن، دا اونلی ریلیجن ہی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ از اسلام. 1000 مذہب ہوں دنیا میں، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں جو ریلیجن ایکسیپٹ کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اسلام پر ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے کہ آپ اسلام پر ہیں، لیکن اسلام پہ رہنا آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم اسلام پہ مسلمان، بولنا آسان، رہنا مشکل. تو اسی اسلام کی جو ہولی پلیسز ہیں، جہاں ہم ایوری ایئر سال میں 2-3 دفعہ، اللہ بار بار نصیب ہو یہ زیارت، وزٹ کرتے، ان ہولی پلیسز کی امپورٹنس اور اس کی ہسٹری میں پیش کر رہا. جیسے میں نے کہا کہ رضوی کالج سے شروع ہوئی تھی، مکہ مدینہ کمپلیٹ ہوا، اور نجف اشرف ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اب کوفے میں تو انڈر ہو گئے. اتنی جگہیں ہیں، ابھی بیت المقدس بھی نہیں گیا میں، اتنی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہم ریگولرلی وزٹ کرتے، بٹ وی ڈونٹ نو کہ کتنی امپورٹنس ہے وہاں کی، اور کتنا ثواب ہے، اور کتنا وہاں جانے کے بعد چینج آنا اپنی لائف میں. تو کل بات کوفے تک پہنچی تھی کہ کوفے میں مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلا ہے. مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل ہے، اور انہی کے روزے میں، مسلم ابن عقیل ہی کے روزے میں، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی بھی ہے. اس کے بعد وہیں پہ ہانی ابن عروہ بھی ہے. یہ تین ایسے پرسنالٹیز ہیں. مسلم ابن عقیل تو اہل خاندان اہل بیت سے، جناب عقیل کے بیٹے اور جناب ابو طالب کے گرینڈ سن ہیں، امام علی کے بھائی کے بیٹے، مولا حسین کے فرسٹ کزن تھے یہ، اور یہ انوائٹ بنے تھے، مولا حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا. ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو صرف جناب مسلم پہ ایک مجلس پوری ہو سکتی. ادھر جناب مختار ہے. مختار کے حالات مختار میں نے اسی عشرے میں 2 سال پہلے پڑھے تھے. میں وہ حالات مختار نہیں پڑھا، میں خالی آپ کو 1-2-3 چیزیں بتا رہا کہ آج مختار زندہ کیوں ہے. وائے، کبھی آپ نے سوچا؟ ابن زیاد تو گورنر تھا، اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے، لیکن مختار کا نشان باقی ہے. کیوں مختار زندہ ہے آج؟ اس نے کام کیا اسلام کے لیے، اس نے بیدار کیا لوگوں کو، اس نے پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا، ان ظالمین سے بدلہ لیا کہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا تھا، اور چن چن کے بدلہ لیا. مختار بھی ایک پلیز غور سے سنو، مختار بھی ایک نارمل شیعہ تھا ہم جیسا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا. وہ بھی عزاداری کر کے خاموش بیٹھ سکتا تھا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھ رہا. جیسا آج کے آج ہماری فکر ہے نا، آج ہماری فکر کیا ہے، میں تو عبادت کر رہا، میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو روزے رکھ رہا، میں اپنا کاروبار دیکھ رہا، میں اپنی لائف کو گزارنا ہے مجھے بامبے میں، اپنی لائف کو گزارنا نہیں. بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار اسلام اف یو آر ڈوئنگ اف یو آر پریئنگ. اگر تم نماز پڑھ رہے تو تم اپنے لیے پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے اپنے لیے رکھ رہے، بیکاز یو آر اے مسلم تو آپ نماز پڑھ رہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. واجبات پہ عمل کرنا कोई बिग डील नहीं है, ये तो लाजिम मस्ट है, करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, जकात, जो इस्लाम की वाजिबात में है, बड़े बड़े वाजिबात बता रहा आपको। आज हमारी फिक्र क्या, आज हमारी सोच क्या, औरत मरद, लड़की लड़का क्या सोच रही, कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस्लाम के लिए सोचते, कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम के लिए सोच रहे, कितने लोग ऐसे हैं जो करबला के लिए सोच रहे। मुख्तार भी इसी तरह खामोश बैठ सकता था, लेकिन मुख्तार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। और यू नो मुख्तार ने 3.5 साल तक वो ऐसी जेल में था, ऐसी जेल में था, उस जेल से बाहर आने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं था कोई काम करे। आज का अगर शिया होता तो बिल्कुल खामोश बैठ जाता, इतनी बड़ी मुसीबत उठा के आराम है। इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम की जेल में था मुख्तार, और पूरा वाकया में वाकया नहीं पढ़ा, कितनी मेहनत, कितनी तकलीफ में था। उतनी तकलीफ के बाद भी व्हेन ही केम आउट, जेल से जब बाहर आया, उसने एक मिशन को लेके बाहर आया, तो वो बेदारी हमारे पास आना, वो अवेयरनेस हमारे पास आना, हमारा जहन खुलना, कब तक इस तरह गफलत में रहोगे, कब तक सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। आप इंसाफ से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, सोचो आज रात में जब घर जाना तो औरत मरद सोचो, 5 मिनट सोचो मैंने क्या कहा, कि अब तक पूरी लाइफ में व्हाट आई हैव डन फॉर करबला, व्हाट आई हैव डन फॉर इस्लाम, मैंने क्या किया अभी तक। ये मत सोचो कि मैंने नमाजें पढ़ी, ये तो वाजिब है, ये तो करना ही करना है। कल अगर अल्लाह पूछे आपसे कि तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया, तो क्या है हमारे पास, कोई आंसर है? आप बोलेंगे बॉम्बे में टाइम ही नहीं मिला। टाइम किसी के पास नहीं रहता, मुख्तार कोई फालतू आदमी नहीं था कि घर में बैठ के जिंदगी गुजार रहा था, वो फ्री बैठा हुआ नहीं था। हर आदमी का एक मिशन होता, हर आदमी का एक काम होता। हमारी औरत कितना काम कर रही, हमारे मर्द कितना काम कर रहे, हमारे बच्चे कितना काम कर रहे हैं। जब तक कुछ करोगे नहीं, जब तक ये फिक्र को पैदा नहीं करोगे, तुम वो स्टेज तक नहीं पहुंचोगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बॉम्बे में लोग भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। जाके यहाँ के कब्रस्तानों को देखो, यहाँ के सेमेट्रीज में जाइए, आरामबाग जाइए, रहमताबाद जाइए, जाके देखिए हजारों लाखों लोग आराम कर रहे। कोई जाता है पूछता है? बड़े बड़े सेठ है, मिलियनर्स थे अपने दौर के, आज कौन पूछ रहा उनको, कोई याद कर रहा, कोई फातिहा पढ़ता, नाम भी याद नहीं है। मैं पूछता आपके ग्रैंड ग्रैंड फादर का नाम याद है? ग्रैंडफादर का ही नाम याद हो गया तो बड़ी बात है, उनके ऊपर उनके वालिद का नाम हमको याद रहता नहीं मालूम। हम इतने गफलत में, वी आर नॉट थिंकिंग कि हम कहां जा रहे। मुख्तार की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह कि उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ कर उसने कहा कि मुझे कुछ करना है। और उसने जो किया काम, मुख्तार ने जो काम किया, उसका नतीजा क्या हुआ, कल आपके सामने मैंने उनके सेइंग्स ऑफ मासूमीन उसके लिए बयान किए। खाली एक ही जुमला फिर रिमाइंड कर रहा है, एक जुमला, मुख्तार उस पर्सनालिटी का नाम है, उस शख्सियत का नाम है, उस कैरेक्टर का नाम है कि जिसकी वजह से इमाम के लबों पे मुस्कुराहट आई। इतना बड़ा काम किया उसने। हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिसको देख के इमाम हमको मुस्कुराए। ये चेंज चाहता मैं, ये चेंज चाहता गुलिस्तान के अशरे में। फिक्र करो, सोचो, तुम्हारे हाथ में पूरे टूल्स हैं, तुम्हारे हाथ में टेलीफोन है, तुम्हारे हाथ में आईफोन है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक्स को इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन करो। मैं यूथ को बोल रहा, बॉम्बे के यूथ को बोल रहा जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, लड़का लड़की को बोल रहा कि प्लीज चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। इसलिए कि अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो डोंट थिंक टुमारो यू आर गोइंग टू गेट चांस। जब मौका मिले नेकी के लिए, जब मौका मिले एक कदम आगे बढ़ो। डोंट से कि मेरे पास टूल्स नहीं है, डोंट से कि आई डोंट हैव टाइम, डोंट से कि मैं क्या कर सकती या मैं क्या कर सकता, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता। नो, तुम्हारा काम है एक स्टेप आगे बढ़ो, मंजिल तक इमाम पहुंचा देगा तुमको। स्टार्ट तो करो, ट्राई तो करो। मुख्तार ने वो काम किया दोस्तों कि अगर उस वक्त ये काम नहीं होता तो करबला जाहिरी तौर पे वो जालिमों से कोई बदला लेने वाला नहीं था। उसके बाद हानी इब्ने उरवा उनकी ज़ियारत, जब मुख्तार की ज़ियारत को जाना जनाब मुस्लिम के बाद, उनकी ज़री पे हाथ रख के दुआ करना। क्या दुआ करना? सभी जाते, एवरीबॉडी गोज, अल्लाह हमको बार बार नसीब करे। जब जाते हो मुख्तार की ज़ियारत को, जनाब मुस्लिम की ज़ियारत पड़ गए, वहां फौरन उनके पीछे उनका रोजा ज़री, तो ज़री पे जाके ये दुआ करो कि परवरदिगार जैसा तूने मौका मुख्तार को दिया, गिव अस आल्सो। ये दुआ मांगो कि हो सकता है तुम्हारा नाम तुमको मौका दे दे अल्लाह, और जैसे मुख्तार जिंदा है तुम भी बॉम्बे में जिंदा रहोगे, तुम भी यहां पे जिंदा रहोगे। इसलिए कि अगर तुम जिंदा रहोगे मरने के बाद तो लोग तुमको याद करेंगे, और जिंदगी मरने के बाद सिवाय उसके और कोई नहीं देता, वो तुमको जिंदगी देगा। तो उससे तुमको फायदा इतना होगा कि जब ये तुम्हारा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ये आखिरत का, लाइफ आफ्टर डेथ का, तुम्हारी एटर्नल लाइफ का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि जब मौका मिले, जितना तुमको मौका मिला उसमें डू समथिंग फॉर इस्लाम, डू समथिंग फॉर करबला, डू समथिंग फॉर इमाम, कोई भी अच्छा काम करो, कोई काम ऐसा करो कि जो तुमको वहां आखिरत में काम आए। मैं आपको एक बात पूछूं, हर दुनिया भर में मैं जाता हूं, हजारों मोमिनीन से मिलता हूं, हर शहर के मोमिन से मुलाकात होती है, बड़े पैसे वालों से भी होती है, गरीब से भी होती है। मुझे आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात हुई मेरी, कोई रियल स्टेट में है, कोई बैंकर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई ये है, कोई वो है, इन मिलियंस ऑफ डॉलर के उनके बिजनेस है यूरोप अमेरिका में। उसने कहा कि यहां बॉम्बे में कितने, बोलते कि मैंने यहां पे एक फ्लैट ले लिया, 4 करोड़ का लिया, 5 करोड़ का लिया, 6। मैं कहा यार अल्लाह तुमको 20 करोड़ का फ्लैट दिलाए, कितना खुश हो रहे फ्लैट्स लेके कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। 3-3, 4-4 हराम नहीं है, इस्लाम हराम नहीं कर रहा फ्लैट्स का खरीदना, नो हराम नहीं है, अगर तुमने हक दे दिया है, रिस्क है, हलाल है तो बिल्कुल खरीदो। तो लेकिन हमारा डिस्कशन क्या है, जब पार्टीज में बैठते, जब लोगों के साथ बैठते, व्हाट वी से, मेरा यहां इन्वेस्टमेंट इसमें, इस शेयर मार्केट में, इस सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे। मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला कि उसने ये कहा कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहां पे भी है और वहां पे भी है, आरामबाग में भी एक इन्वेस्टमेंट है, रहमताबाद में भी इन्वेस्टमेंट है। कोई मिला आपको कभी? आपने सोचा ये मैं क्या बोल रहा आपको? आज शबे जुमा, इसलिए 2 दिन बातें वहां की बता रहा। कभी मैंने सोचा, कभी आपने ये प्लान किया कि आपका यहां रहमताबाद में या महफिल मुस्तफा में या आरामबाग में कितना इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट है हमारा? वी डोंट वॉन्ट टू गो डेट प्लेस, अपनी लाइफ में हम जाना नहीं चाहते, जबकि हमारी परमानेंट जगह वही है। बॉम्बे में इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट्स में मत करो, जब एक फ्लैट यहां बनाओ तो दूसरा फ्लैट वहां बनाओ। आप बोलेंगे वहां फ्लैट कैसा बनेंगे, वहां तो इतनी छोटी सी जगह है। इमाम अली की सेइंग है यार, गौर से सुना, एक एक वर्ड है इमाम अली का। इमाम अली कहते हैं, गौर से सुने, इमाम अली कहते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन पैदा की जो तुम्हारी नेकेड आई से तुम नहीं देख सकते, इतनी बड़ी, गौर से सुनना, इमाम अली कहते हैं कि इतनी बड़ी जमीन है, और दुनिया में तुम हजारों एकड़ जमीन खरीदते हो, लेकिन इमाम कहते हैं यू नो दैट कि रियल तुम ओनर कितनी जमीन के हो, 6 फीट के खाली। असल तुम्हारी जो पूरी जमीन पे जो तुम्हारा शेयर है वो जस्ट 6 फीट का है बस, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हमारा जो शेयर पूरी मार्केट में, आपकी मार्केट में मिलियंस डॉलर का ऊपर है, लेकिन असल जो शेयर है पूरे जमीन के ऊपर कितना बड़ा है हमारा? 6 फीट का। 6 फीट से ज्यादा अली कहते हैं कि तुम्हारा शेयर नहीं है जमीन के ऊपर। कितनी जमीन खरीद के किस गुरूर और तकबूर के साथ जिंदगी गुजार रहे, तुम्हारा रियल शेयर तो 6 फीट का, तुमको 6 फीट से ज्यादा 7 फीट नहीं मिल सकती। ये तुम्हारी हैसियत है। उसके बाद भी तुम गफलत में हो, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना के खुश हो रहे। तुम खुश इसलिए हो रहे कि तुम्हारी है, तुम समझ रहे तुम्हारी है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। इमाम अली ने जो जुमला बोला उसको खाली रियलाइज करोगे, बट इमाम अली हैज सेड, हमारी रियल क्या है? कुछ नहीं है, जो आरामबाग में या रहमताबाद में जो छोटी सी जगह वो हमारी है बस, उसके अलावा हम बस कुछ नहीं। उसके लिए अगर तुम वहां पे कुछ बनाना चाहते, अब सुनो, मुख्तार ने काम किया, अगर रियली तुम वहां पे कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे उन उस जगह के लिए, हर औरत कर सकती है, हर मर्द कर सकती। अल्लाह का रसूल कहता, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल बोलते कि अगर किसी मस्जिद में तुमने एक ब्रिक लगाई, ईंट ब्रिक लगाई, तो अल्लाह वो एक ईंट के बदले में तुमको जन्नत में एक महल अता करेगा, पैलेस अता करेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ईंट लेके चले जाओ, हर मस्जिद में जाके लगाऊंगा मैं, बता के मत लगाओ। क्या बोल रहा मैं, बता के मत लगाओ। इमाम बारगाह में लगाना, मस्जिद में लगाना, यतीम खाने में लगाना, एक ईंट लगाओ, उसके बदले में अल्लाह एक पैलेस अता करेगा, लेकिन तुम्हारी नीयत देखेगा। अब इसका यह मतलब नहीं कि एक ही ईंट लगाओ, मैं मिसाल दे रहा हूं, यह एक चीज है। दूसरी चीज, वहां का इन्वेस्टमेंट तुम्हारी औलाद, औलाद को दीनदार बनाओ, वो दूसरा इन्वेस्टमेंट। किसी दीनी मदरसे में वहां पे इन्वेस्ट करो मंथली जो इन्वेस्ट कर सकते। अगर तुम्हारी वजह से कोई लड़का या लड़की दीनी तालीम हासिल कर रहा, सिर्फ वो मिसाल दे रहा, सिर्फ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखा उसने, या सिर्फ एक मिसाल दे रहा, उसने सिर्फ सूरह अलहम सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोला, तो अगर ये कर लिया, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है कुरान की, बहुत छोटी है, सबको पता है। अगर तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की या तुम्हारे मदरसे में किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखा और तुम उसकी वजह बने, अल्लाह इतना करीम है कि फिशार खबर उसने ख़त्म किया था उस मर्द के लिए कि जिसमें फिशार हो रहा था, इसलिए कि उसके बेटे ने पहली मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला, तो अल्लाह का रसूल कहता कि अल्लाह कह रहा कि जिसके बेटे ने मुझे रहमान और रहीम बोला, मैं उसके बाप पर अजाब कैसे नाज़िल करूं। आपने गौर किया, ये इन्वेस्टमेंट कर, यह मुख्तार का काम है। प्लान योरसेल्फ, प्लान योरसेल्फ, मैं यूथ को बोल रहा, प्लान योरसेल्फ, टाइम को डिवाइड करो, मुख्तार की ज्यारत करके वापस नहीं आना। अब उसके बाद मुख्तार की ज्यारत के बाद जनाब हानी इब्ने उरवा है, फिर वहां से निकल के आप जाते हैं, मैं कूफा बिल्कुल एंड कर रहा आज, वहां से निकल के जाते हैं जनाब मीसम तमार के पास, राइट, बड़ा ह्यूज जनाब मीसम का रोजा बन गया माशा अल्लाह, हमको ज्यारत नसीब करे। मीसम की लाइफ से हमको क्या मिला, हम क्या करते, वी जस्ट गो देयर, से सलाम, दो रकअत नमाज पढ़ी, वापस आ गए, बस। क्या दुआ मांगते हैं मीसम के पास जाकर, या मीसम की पर्सनालिटी कितना जानते हैं। मीसम है तमार कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं, अब गौर से सुनना प्लीज, मीसम तमार में जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो इतना ओबीडियंट था इमाम अली का, इतना ओबीडियंट था कि जो मर्जी अली था वो मर्जी है उसकी जिंदगी थी, तो उसको इमाम ने वो स्टेटस दिया कि गौर से सुनो कि मीसम के पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो विलायत अली थी, और उसके बाद सबसे बड़ी जो नेमत मीसम को मिली थी ना, उनका यकीन इतना था, बिलीव, ही वाज सो स्ट्रांग इन हिज बिलीव। हमारे पास 0.1% नहीं है, 0.1% यकीन नहीं है, वी से बट वी डोंट हैव दैट बिलीव। अगर यकीन, गौर से सुनो, यकीन नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं इबादत का, रात भर तुम सजदा करो, पूरी लाइफ इबादत करते रहो, यकीन ही नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा। उससे बेहतर यह है कि रात भर सो जाओ और दो यकीन के सजदे कर लो। समझ में आई। अब मीसम का यकीन क्या है सुनो, इब्ने ज़ियाद, गौर से सुनो, इब्ने ज़ियाद जब गवर्नर बन के आया कूफे का, उसने अरेस्ट करना शुरू किया इमाम अली के शियों को, जिसमें मुख्तार इब्ने अबू अबैदा सकफी को अरेस्ट किया, जनाब फिज़ा के चारों बेटों को अरेस्ट किया, इब्राहिम इब्ने मालिक के अश्तर को अरेस्ट किया, 3,500 आदमी को अरेस्ट कर दिया, सबको जेल में भेज दिया। सबसे लास्ट में कोई इसको पकड़ा, मीसम तमार का। अब सुनो, मीसम की लाइफ का ये हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए ना, अगर तुम्हारे पास आज यकीन थोड़ा डेवलप हो जाए ना, तो फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारा हर सजदे में कितना मजा है। हर तुम्हारे सामने से सब पर्दे हटते। आई नो द पीपल, लिटरली बोल रहा, मैं कोई जोक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। अगर तुम्हारे पास यकीन, बिलीव तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए ना टूवर्ड्स अल्लाह, टूवर्ड्स मासूमीन, टूवर्ड्स अवर प्रॉफिट, टूवर्ड्स इमाम अली, अगर तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग हो जाए ना, ईमान जिसको बोलते हैं, यकीन जिसको बोलते हैं ना, तो तुम्हारे सामने से सब पर्दे हट जाते। तुम आगे भी देख सकते, पीछे भी देख सकते। अब सुनो मीसम का यकीन क्या था। इसलिए कि यकीन विलायत अली के पास ही आता है, हर के पास नहीं रहता। मीसम को इब्ने ज़ियाद ने अरेस्ट किया, प्लीज गौर से सुनना, अरेस्ट किया, हथकड़ियों में डाल के। मीसम वॉज 70+, लेट 60s या 70s में थे। हथकड़ियों में डाल के मीसम को लाए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। 2,500 आदमी, 2,000 अप्रॉक्सीमेटली 2,500 के करीब या 2,000 के करीब उसके दरबार में पूरे उसके चाहने वाले बैठे हुए। ये जालिम इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा हुआ, मीसम को लाके सामने खड़ा किया। जनाब जैसे ही खड़ा किया मीसम ऐसे, इब्ने ज़ियाद तख्त पे, उसने कहा मीसम, हम जाते ना मीसम, उनके लिए बात कर, मीसम यू नो, उसने इंग्लिश में नहीं बोला, वो मैं बोला, यू नो या मेरी हुकूमत है, अब नामे अली नहीं लेना कूफे में, बहुत हो गया, अब हमारी हुकूमत है। मीसम ने ऐसे सर को उठाया, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाली, आई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया करके कहा इब्ने ज़ियाद तू मुझे रोक रहा जिक्र अली करने से, याद रख। मीसम के साथ हथकड़ी में वो तख्त पे है, मीसम नोस के वो एक लम्हे में इसकी गर्दन को ख़त्म कर देगा, हुकूमत उसकी है, जालिम की हुकूमत है। उसने कहा मुख्तार, मीसम ने कहा कि अय इब्ने ज़ियाद तू कह रहा कि मैं अली का नाम ना लूँ या तेरी हुकूमत है, याद रख मैं पैदा जिक्र अली के लिए हुआ हूँ। किसी में हिम्मत है बोलने की? हमारे पास डिप्लोमेसी है, अपनी जान बच जाए, अपना मफाद बच जाए, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल रिलेशनशिप विद दिस मैन, वो हराम करता है करने दो, अभी आई कैनॉट से टू हिम बिकॉज वो पैसे वाला है। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, जब तक ये कैंसर हमारे पास से नहीं जाएगा, हम इसी तरह रहेंगे। मैं हजारों मरतबा बोल चुका, ये डिप्लोमेसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज किस में हिम्मत है, किस में करेज है? मिक्स गैदरिंग्स में जाते, शादियों में मिक्स गैदरिंग्स होती है, किसी में ये करेज है, किसी में ये है बोलने की कि आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड बिकॉज इट्स ए मिक्स गैदरिंग, मौला हुसैन इसको पसंद नहीं करते, मेरे रिलेशनशिप है, मेरा बिजनेस है, मेरी जिंदगी है। बाबा किसको सूरत बताना, किसको? आप सोचो मीसम इतनी बड़ी पर्सनालिटी, गर्दन पे तलवार, लेकिन कितना करेज है कि आंखों में आंखें डाल के बोल रहा कि तू क्या मुझे रोक रहा, मैं पैदा इसीलिए हुआ। तो अली ने जो उसको गौर से सुनो, जब इमाम ने उसको यकीन दिया ना, अब यकीन क्या था? मीसम खड़ा हुआ है जंजीरों में, इब्ने ज़ियाद ने अपने एक वजीर से कहा कि जाके उस कैदी को लेकर आओ। दरबार में कैदी एंटर हुआ, कैदी समझते हो ना, जंजीरों में झकड़ा हुआ एक आदमी एंटर हुआ, उसके पैरों की जंजीरों की झनकार मीसम के कानों में आई, जैसा छन छन जैसा चलता ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो भी ऐसी जंजीरों में झकड़ा हुआ कैदी आके मीसम तमार के बाजू खड़ा हो गया। मीसम ने ऐसा देखा उसको, देखा कि 6'2" या 6'3" हाइट है, वेरी फेयर कम्प्लेक्शन, ब्राउन हेयर, कलर नहीं किया था बोल रहा, ब्राउन हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स, वेरी हैंडसम, फेयर, बहुत गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े जुल्फे, इसलिए कि कैद में रहने से जुल्फे इतनी बढ़ गई थी। और मीसम ने ऐसा गौर से देखा, देख के कहा मुख्तार, ये मुख्तार था, मुख्तार के बारे में यह है कि इतना हैंडसम था ये। अच्छा, अल्लाह ने भी हुसन दिया था और विलायत अली का हुसन भी था, हाँ, कैरेक्टर का भी हुसन था। मीसम ने पूरा दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस, सकता है میسم نے ایسا دیکھا مختار کو, دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو, ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا, 60 ہجری کا واقعہ ہے, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. بس یہ کہنا تھا, ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ قیدی میرا قاتل ہوگا. اس نے جلاد کو حکم دیا. دیکھو آپ عجیب بات, دو قیدی بات کر رہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دشمن کے دربار میں, میسم بھی زنجیروں میں, مختار بھی زنجیروں میں, اور سامنے ابن زیاد جیسا ظالم بیٹھا ہوا. میسم نے پلٹ کے مختار سے کہا مختار مبارک ہو, تم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوگے, ابھی کربلا کا انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا, واقعہ ہی نہیں ہوا, پہلے سے بول رہے. مختار کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. ابن زیاد نے کہا ابھی اسی وقت مختار کے گلے کو کاٹ دو. جلاد تلوار لے کر آ گیا, لا کے مختار کے میری طرف دیکھے, تلوار لا کے گردن پہ رکھتا ہے. ایسے لمحے پہ مختار نے پلٹ کے میسم سے کہا, میسم اب کیا بولتے ہو, کیا بولتے ہو؟ میسم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو جب دو دفعہ کہا تو ابن زیاد نے کہا رائٹ ناؤ. یہ واقعہ مشہور ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, صرف جناب میسم کا واقعہ آیا اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا. میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں اس کو. تب اس وقت میسم نے کی طرف دیکھا مختار, میسم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار مبارک ہو, تم بدلہ لوگے. تیسری مرتبہ جب کہا تو ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اسی وقت, رائٹ ناؤ جلاد کو پکار کے کہا کہ ابھی اس کے سر کو قلم کرتے مختار کے. جب گلے پہ تلوار آ گئی تو اس وقت مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا کہ اب کیا کہتے ہو. دوستو یہ وہ لمحہ تھا, غور سے سنو, یہ وہ وقت تھا کہ اچھے اچھے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائیں. پتہ نہیں کیا سنا تھا مولا سے, لیکن ایسے موقع پہ جب مختار نے پلٹ کے کہا کہ اب کیا کہتے, اب تو تلوار چل رہی ایسی تلوار, تو اس وقت میسم کا ایمان, میسم کا یقین معراج پہ چلا گیا, معراج پہ گیا. اب زور سے بولا, اب تک آہستہ بول رہے تھے, اب زور سے بولا کہ پورا دربار سنے, پکار کے کہا مختار اس نے کہا ہے جو لوہے محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے, اس نے کہا ہے مجھ سے. واٹ آر یو ٹاکنگ, بس یہ بولنا تھا. دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین آ گیا. یزید کا جو پوسٹ مین ہوتا تھا اس کا ڈریس الگ ہوتا تھا. اس نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد حکم دینے سے والے خط کو پڑھ لے. وہ آیا. اچھا یہ جتنے گورنرز تھے نا یزید کے, بڑا ڈرتے تھے پوسٹ مین سے. کیوں؟ یہ چور تھے یہ لوگ, پتہ نہیں کوئی سسپینڈ ہونے کا لیٹر تو نہ آ جائے. نہیں, جتنے جس کو یقین ہوگا, جو نیک ہوگا, جو ایماندار ہوگا, جو آنےسٹ ہوگا, اس کو ڈر تھوڑی ہوتا. یہ سب چور, میں تو کھل کے بول رہا ہوں, جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے, جو کتابوں میں وہ بول رہا. تو جیسی یزید کا پوسٹ مین آئے گا, ایک اور سکیڈ آیا, پتہ نہیں کیا آ گیا, لیٹر آیا. اس نے انویلپ کو ایسا چاک کیا. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا کہ انویلپ تھا نہیں تھا اس زمانے میں, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. اس نے انویلپ کو چاک کیا, لیٹر کو نکالا. کس نے؟ ابن زیاد نے. جیسے ہی اس نے لیٹر پڑھنا شروع کیا, دیکھو میسم کا یقین کیا ہے, پڑھنا شروع کیا. میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ اگر یقین آ جائے تو تم آگے اور پیچھے دیکھو گے, یہ ہے ولایت علی. اس نے کہا, جیسے ہی وہ لیٹر پڑھنے لگا, میسم کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی, پکار کے کہا ابن زیاد میں بولوں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے یار, یو وانٹ می ٹو ٹیل یو, انگلش میں نہیں بولا وہ, یہ تو بول سکتا تھا میسم, وہ تو جاہل تھا. یو وانٹ می ٹو ٹیل یو, اس کا چہرے کا رنگ آگے پیچھے ہو رہا. لکھا ہوا تھا کہ اے ابن یزید نے لکھا تھا کہ اے ابن زیاد, میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے, مختار جس حالت میں ہے رہا کر دے, ریلیز کر دے. یہاں تک تو واقعہ مشہور ہے. اب سنو اصل بات, جو میسم کب تھا. اگر اف یو ڈو سم تھنگ فار امام علی, میں جو 10-15 منٹ سے بول رہا یہی تو بول رہا آپ کو کہ ڈو سم تھنگ, If you do something, Ali कैसे इज्जत को बचाता है? अब मैं आपसे सवाल करता, अगर 5 मिनट लेट आता ये पोस्टमैन तो मुख्तार तो खतल हो जाता, उसके गले पे तो खंजर चल जाता और मीजम झूठा साबित होता, ठीक है ना? अगर 5 मिनट लेट आता ट्रैफिक मिल जाती बॉम्बे की। मैं सफर करता रोज ना, मैं विक्टिम। अब बॉम्बे 2 घंटे में आया हूं डोंगरी से, इतनी ट्रैफिक। मैं मजलिस थी, मजलिस पढ़ के 6 बजे निकला, यहां पे 7 बजे निकला, यहां पहुंच रहा हूं। एनी ट्रैफिक आ जाती, लेट आ जाता तो मुख्तार तो खत्म हो जाते, मीसम झूठा साबित होता, अली वाला झूठा साबित होता। पहले आ जाता, जल्दी आ जाता ये पोस्टमैन तो मीसम का यकीन लोगों को मालूम कैसे होता? अरे अब ये वही कर सकता जो वक्त का मालिक हो। अली ने बताया कि देखो कैसे मैं अपने चाहने वाले का, तो इफ यू रियली फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली, इमाम अली ऐसा तुमको बचा लेता। तो मीसम के पास जब जाना, उनकी ज्यारत को जब जाना, तो उनकी जरी को पकड़ के ये दुआ करना कि मीसम है तमारा इमाम अली के चाहने वाले है, गुलाम है अली, एक चीज आप इमाम अली से दो, वहां पे जाके हर लड़का लड़की औरत मरद ये दुआ करो, इसलिए कि यकीन सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं है अगर यकीन तुम्हारे पास नहीं है। और यकीन आ जाए, बिलीव आ जाए, तो तुम्हारे सामने से मैं बार बार बोल रहा हिजाबात, ये आगाए बहजत को ये स्टेटस कैसे मिला? कितने ऐसे उलमा है कि जिनके सामने से पर्दे हटे हुए थे, वाई उनको विलायत इमाम अली में इतना यकीन था, इबादतों पे इतना यकीन था कि हर चीज यकीन पे आ गई। तो मीसम की जियारत को जाना तो ये दुआ करना कि जनाबे मीसम आप इमाम अली को बोलो, जैसे आपके पास यकीन था विलायत अली में, हमारे पास भी वो यकीन हो जाए। अरे एक जब बंदे के मुंह से आमीन नहीं निकला यार, यकीन आने के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े। सुभान अल्लाह। दोस्तों दो ऐलान मेरे पास आए, मैं बिफोर मैं मजलिस आगे बढ़ने से पहले दो ऐलान कर दूं कि फिर कर रहा कि इतवार के दिन सिलवासा 30th को सिलवासा में जो ज्यारत के लिए लोग जा रहे, वो आज मेरे ख्याल से आखिरी है, वो बसेस का अरेंजमेंट 10 बसेस हो गए, तो बिल्कुल लास्ट बुकिंग्स चल रहे, जिसको भी जाना है आप बाहर उनका टेबल रखा हुआ है, चलो जवारो और वहाँ पे अपनी बुकिंग करवा लें 30th को इंशाल्लाह संडे, और मैं खुद साथ जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे मजलिस पढ़ूंगा और ज्यारत इमाम हुसैन जरी के पास पढ़ेंगे। 30th सुबह 6-7 बजे निकल रहे, पूरा प्रोग्राम आपके सामने बाहर टेबल्स है, आप सिलवासा के लिए मना लें। दूसरा मखसूस ऐलान कि कल टुमारो फ्राइडे यहाँ की मजलिस के फौरन बाद महफिल मुस्तफ़ा जुहू कपासवाड़ी, वहाँ पे मखसूस अमाल नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ज्यारत आशुरा, ये अमाल मैं करवाऊँगा हर साल की तरह। आपसे ख्वाहिश लेडीज जेंट्स बच्चे सब, अपनी डेस्टिनी को अगर बदलना है तो ये अमाल इज्तमाही तौर पे करें। ये लास्ट ईयर के बाद, इससे पहले के साल के बाद कितने लोगों की दुआएं और डेस्टिनीज बदले। 10:30 शार्प ये अमाल शुरू होंगे, 1 घंटे के अमाल है, एक दफ़ा कर लो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना चेंज आता। टुमारो महफिल मुस्तफ़ा कपासवाड़ी 10:30 अमाल जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ज़ियारत आशूरा, आपसे ख्वाहिश के इसमें शिरकत करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मीसम तम्मार की जरी पे जाना तो ये दुआ करना कि मौला जना मीसम आम मौला से बोलो कि मुझे ये, मेरे पास भी वैसा यकीन, थोड़ा यकीन आ जाए जैसा आपके पास तो इतना अजीम यकीन था, उसके बाद देखोगे तुम्हारी जिंदगी बॉम्बे में बदलती कैसे। अब मैं कूफे को रोकता यहां पे, कूफे के हालात मैंने 50% पढ़े, 50% नहीं पढ़े, حالات کی وجہ جناب ہانی ابن عروہ کا واقعہ یا مسجد کوفہ کے ڈیٹیلز بھی نہیں بتا. اب میں جا رہا انٹر ہو رہا بغداد میں کاظمین, کاظمین بغداد یہ سٹی جو ہے جو ہر آدمی ہم جاتے ہیں, لیکن آج کل افسوس سے میں بول رہا جتنے یہاں سے بامبے سے گروپس جاتے یا دنیا بھر سے, آج کل کیا ہو رہا کہ صبح جا رہے شام میں نکل جا رہے, ایک ہی دن کاظمین اور سامیرا کر رہے. ایسا مت کرو یار, میں کسی کو برا نہیں بول رہا, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ایک دن میں تم کاظمین اور سامیرا فلائنگ وزٹ کے لیے امام کے پاس نہیں جاتے. یو پیپل فورس سوائے المنتظر کے, جو منتظر جاتا ہے جس میں میں جاتا ہوں, وہاں باقاعدہ دو راتیں رکتے ہیں, امام کے پاس فلائنگ وزٹ نہیں ہونا. اب اس کون ہے وہاں پہ کاظمین میں, کون ہے وہ مظلوم ہے, وہ موسیٰ بن جعفر باب الحوائج ہے. اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے. اب کاظمین کی اور بغداد کی ہسٹری آج سے شروع ہو رہی. یہ بغداد سٹی یہ کب کی ہے سٹی؟ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بغداد سٹی کو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, امام علی کے زمانے میں بغداد سٹی نہیں تھی. یہ بغداد سٹی کا آغاز بنی امیہ کا جو فال ہوا, بنی امیہ کا فال پانچویں امام کا زمانہ, آخری حکمران جو تھا وہ مروان تھا بنی امیہ کا, وہ پہلا والا مروان نہیں, یہ آخری ایک مروان تھا. اگر میں بنی امیہ کے جتنے یزید سے لے کر مروان تک یہ جتنے 150 ایئرس کی ان کی ہسٹری ہے, 120 ایئرس لگ بھگ ان کے پورے حکمران جو رولرز تھے ان کی اگر میں ہسٹری پڑھوں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے سکسیسر آف پروفٹ تھے, ایسے لوگ رسول کے وارث بنے ہوئے تھے. اسلام یہ اسٹیج پہ آ گیا تھا کربلا کے بعد, یہ اسٹیج پہ تھا کہ کس طرح بنی امیہ نے حکومت کی. ان کا ایک حکمران سلیمان وہ اتنی شراب پیتا تھا, اتنا کھانا کھاتا تھا, وہ مرا کیسا؟ وہ اپنے آپ کو رسول کا وارث. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار, آئی نو میری مجلس زینبیہ پہ لائف جاری, آئی کین گیو یو دا ریفرنس. ساری کتابوں میں جا کے بنی امیہ کے حکمرانوں کی تاریخ دیکھو, میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی, لیکن ایک حکمران بول رہا, ایک رولر بول رہا, اس نے اور میں بول رہا کہ آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز واٹ آئی ایم سیئنگ. میں تین چار دن بامبے میں اور جا کے ہسٹری کو دیکھو, دین یو ٹیل می کہ ان کا ایک حکمران کیسی حکومت تھی بنی امیہ کی, ان کا ایک رولر جو اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفیٹ بول رہا, وہ شراب اتنا پیتا تھا, ڈرنک اتنا کر, لکر اتنا تھا, اتنا کرتا تھا کہ اس نے حج کا ارادہ کیا. امیجن کرو, امیجن کرو, حج کے ارادے پہ اس نے کہا تو اس کی گستاخی اتنی بڑھ گئی تھی, اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیوں گا. آپ حیرت مت کرو, حیرت مت کرو, یزید جب مکے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلوا سکتا, کیا تاریخ نہیں ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ممبر کو گرز مار مار کے گروا سکتا, گھوڑوں کو مسجد نبوی میں بنوا سکتا, مسلم کا جو لشکر آیا تھا کیا کیا تھا اس نے؟ کعبے کے غلاف کو, کور آف کعبے کو جلا دیا تھا, اور مدینہ میں مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بنوایا تھا, رسول اللہ کے ممبر کو گرز مار کے گرایا تھا. یہ یزید نے کیا تھا کربلا کے بعد 64 ہجری کا, یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے مسلم کا, معلوم کر لو تاریخ میں. 50,000 کا جو لشکر بھیج کے مدینہ کو تاراج کروایا تھا, ہر کتاب میں موجود ہے. اور اسی طرح یہ ظالم اپنے آپ کو پروفیٹ کا سکسیسر بول رہا, اور اس نے کیا کیا؟ اتنا ڈرنک کیا, اتنا کہتا ہے اس کی ہمت, اس نے کرانی کعبے میں بیٹھ کے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا, سفر پہ آ رہا تھا مر گیا, سیریا سے مکہ آ رہا تھا, کہتا ہے کہ میں کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے پیوں گا. یہ تو جرت ہو گئی تھی, یہ تو ان کی ہمت تھی. شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان حکمرانوں کو چل, دوستو دردناک ہسٹری ہے, دردناک شیم لیس ہسٹری ہے ہماری بنی امیہ کی ہسٹری, دیکھو جا کے. میرے پاس افسوس کہ ٹائم کا فیکٹر ہے یہاں پہ, اور اسی زمانے میں پیرلل پانچویں امام کا زمانہ, چھٹے امام کا زمانہ, اور امام پوری اپنے چاہنے والوں کو وہ تعلیم دے رہے, وہ دین دے رہے جو محمد مصطفیٰ کا دین تھا. वो उसी तरह रेस्ट्रिक्शन रख रहे कि उस वक्त के मुसलमान ये नहीं बोल रहे कि यार यार मौला उसने तो इतना फ्रीडम दिया, आप बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे रहे, खुल्लम खुल्ला वो गुनाह कर रहा। यजीद का क्या था, दरबार में बैठकर पूरे एम्बेसडर्स के सामने जब ये सैदानियों का काफिला पहुंचा तो यजीद के हाथ में क्या था, ग्लास ऑफ वाइन लेके ऐसा पीता था और मजाक उड़ाता था, जोक्स करता था, गैम्बलिंग कर रहा था। वही चला। इसीलिए तो कहते कि अगर हुसैन की कुर्बानी और सैक्रिफाइस नहीं होता तो आज 1 बिलियन मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा वो खत्म हो जाता। ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा, ख्वाजा अजमेरी जैसी पर्सनालिटी यूं ही नहीं कहा कि हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। हक तो यह है कि 60 हिजरी तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का था, 61 से कयामत तक का इस्लाम हुसैन का है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ख्वाजा अजमेरी का जुमला ला हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक तो यह है कि बिना ला इलाहा हुसैन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। समझो इन लोगों के काम। तो ऐसे पीरियड में बगदाद सिटी, ये बनी उमैया का एंड था, बनी अब्बास का आगाज था। बनी अब्बास के आगाज में मंसूर दो अनखी जो छठे इमाम का खातिल है उसने इसको ज्यादा किया। उसके बाद मंसूर के बाद हारून रशीद अब्बासी, इसने पूरा बगदाद सिटी बनी। ये बगदाद सिटी इतनी दर्दनाक सिटी है जिसका कंस्ट्रक्शन इतना दर्दनाक है। आज मैं आपको बताऊं, हमारा यूथ थोड़ा बेदार हो कि देखो कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस के बाद आज इस्लाम तुम्हारा यहां तक पहुंचा है। जब बगदाद सिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था हारून के जमाने में उसकी जेल में, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार फिर बोल रहा, 80 से 100,000 लोग जेल के अंदर थे। उस दौर का पॉपुलेशन देखो, और 80,000 से 1,00,000 आदमी जेल में। ये लोग कौन थे, कोई डाकू थे, क्रिमिनल्स थे, चोर थे, क्या थे ये लोग, क्या उनका क्राइम क्या था। आज कितना रिलैक्स होके गुलिस्तान हिंद बॉम्बे में आराम से बैठ के बड़े प्लेजर के साथ प्लेजेंट वेदर में हम आराम से बैठ कर जिक्र हुसैन सुन रहे। जब आप गेट में एंटर हो रहे थे या घर से निकल रहे थे कोई आपको थ्रेट नहीं थी कि अगर तुम जाओगे हुसैन के जिक्र में तो तुमको मार दिए जाएंगे। कितने आराम से आज हम हैं। इंडियन गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी है कि आपको टोटल फ्रीडम के साथ आपको आजादारी करने का मौका मिल रहा। टोटल फ्रीडम है, हमको कोई रोक रहा नहीं, कोई ठोक रहा नहीं, कोई बोल रहा नहीं, कोई थ्रेट नहीं कर रहा। जस्ट से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस जमाने में ये 80,000, मैं प्लीज गौर से सुनो, आई डोंट नो कि 2-3 दिन तक खाली काजमे नहीं चलेगा। 80,000 और 100,000 आज का पॉपुलेशन नहीं दोस्तों, उस जमाने का पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में 100,000 जो इमाम अली के शिया, जो शियाने अली, जो अलियन वली अल्लाह बोल रहे थे, जो आजादारी हुसैन करना चाहते थे, उनको जेल में डाला गया। क्राइम क्या था, क्राइम ये नहीं था कि चोर थे, ये डाका डाला था, ये क्रिमिनल्स थे, नो, उनका क्राइम ये था कि उनके दिल में विलायत अली थी, उनके दिल में आजादारी हुसैन थी। ऐसा चुनते थे, पकड़ते थे, डाल देते थे। एक दिन हारून रशीद बैठा हुआ है, उसने कहा तीन चार दिन हो गए, एक अली वाले को तुमने पकड़ा नहीं। उसने कहा कि इनके इमाम ने, मुसअब ने, जाफर ने, अभी मैं इमाम मुसे काजिम अल इस्लाम की पूरी बायोग्राफी पढ़ूंगा कि आपकी विलादत कैसे कब हुई, आपकी माँ का नाम क्या था और आपका खंड, मैं पूरी मदरसी आज और कल सातवें इमाम पे पढ़ूंगा। तो वो उनको मालूम होना कि हमारी इमाम की हिस्ट्री क्या है, कैसे मौके पर इमाम ने हमको मैसेजेस दिए। हारून रशीद कहता है कि एक भी अली वाला नहीं मिला, आप सोचो क्या हाल। तो लोगों ने, उसके जो सिपाहियों ने कहा कि क्या करें, सब तखिये में चले गए, कोई सामने नहीं आ रहा। देखो कितना क्रिमिनल, गौर से सुनो कितना क्रिमिनल था। उसने कहा अच्छा सब तकिए में चले गए, तुम ऐसा करो, प्लीज गौर से सुनो, तुम ऐसा करो, उस जमाने में कार्स नहीं थे, कैमल या हॉर्स थी, ये लोग वॉक करते थे। तो कहा और स्पीड भी इतनी नहीं होती जैसे आज की 80-100 की स्पीड है, कैमल की स्पीड यू नो, हॉर्स की स्पीड यू नो, और रास्ता पूरा बाजार। उसने कहा कि मेन बाजार में जमीन के ऊपर अली लिख दो। देखो दोस्तों जुल्म क्या है, मेन बाजार में अली लिख दो, हर थोड़ी देर के बाद, दूर के बाद, उसके बाद दोनों जगह बैठो, सिपाहियों से कहा बैठो, छुप के बैठो, अगर कोई शख्स उस नाम को देख के रुके तब समझना ये अली का शिया है, इसको पकड़ लेना, कितना भी मजहब छुआ। अगर कोई डायरेक्ट चले जाए उसके ऊपर से, उसको नहीं पकड़ना। अगर वो एक लम्हे के लिए, कोई शिया ऐसा नहीं होगा कि अली लिखा हो उसमें पैर रख के जाए, रुक जाएगा, का एक लम्हे के लिए भी रुके तो उसको पकड़ लेना वाली वाला। आपने देखा कि मजहब छुपाने के बाद भी इन लोगों को जेलों में डाला गया, इस तरह का सेक्रीफाइस है। जब हारून रशीद वासिले जहन्नम हुआ तो इसकी जेल से 1,00,000 शिया ने हैदर करार बाहर आए, इब्ने ज़ियाद की जेल में भी यही था, मंसूर दोआना की हज्जाज बिन यूसुफ की जेल में भी यही था। ऐसा सेक्रीफाइस है। हम कितना रिलैक्स है आज का शिया, आज का शिया कितना रिलैक्स है, आज आप कितने रिलैक्स है माशाल्लाह। ये तुमसे पूछा जाएगा कि जब इतना अच्छा तुमको एटमॉस्फियर था, इतना अच्छा माहौल था, इतना रिलैक्स होकर लाइफ गुजार रहे थे, सारी फैसिलिटीज हमने दी थी, उसके बाद तुमने कोई काम नहीं किया हमारे लिए। यही तो बोल रहा बार बार मैं, हिस्ट्री खाली हिस्ट्री सुना रहा नहीं, इसमें टोटल मैसेजेस होना कि एक मेरी पूरी 10 दिन की मजलिसों के बाद एक चेंज आना यूथ में, उनमें वो ख्याल आना, उनकी थिंकिंग बदलना, उनकी सोच बदलना, उनके दिलों में ये फीलिंग्स पैदा होना, उनका यह हर्ट होना कि यार दे हैव डन समथिंग, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट मी। एक लड़का या लड़की भी तुम अपने तहत शुरू करो यार, तुम स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, वो फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, राइटिंग के जरिए तुम स्टार्ट करो, तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो जाएगी इंशाल्लाह। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये है अरुण। मैं अभी तो खाली यार स्केच खींच रहा ना। 7वें इमाम, आपकी विलादत, डेट ऑफ बर्थ, 7th सफर, ये सफर जो आ रहा, 7th सफर, 128 हिजरी, आपकी शहादत 25 रजब, 25 रजब, 183 हिजरा। 7 सफर को विलादत है। हम विलादत इसलिए नहीं आपकी जश्न करते कि चेहलुम नहीं होता इमाम का, गम हमेशा खुशी पे गालिब रहता। और शहादत 25 रजब, शहादत की तारीख में कोई डिफरेंस नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। तो ये आपकी विलादत हुई मदीने मुनव्वरा से थोड़ी सी दूर पे, एक 4-5 किलोमीटर पे अबुवाह एक जगह है। ये वही जगह है कि जहां हमारे रसूलुल्लाह की मादर गिरामी की खबर है। आपको मालूम है वहां पे आपकी ग्रेव कहां है, बीबी आमिना की, अबुवाह, अबहा नहीं, मक्के और मदीने के दरमियान इफ यू कम फ्रॉम यम्बो तो वहां पे अबहा मिलता, लेकिन वो नहीं, वो माउंटेन्स में, ये अबुवाह, ये मदीने मुनवरा से आई थिंक 5-6-10-15 किलोमीटर्स के ऊपर एक छोटा सा विलेज। ये वही जगह है कि जहां बीबी आमिना, हमारा लाखों सलाम हमारी मां को, हमारे सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम की, आपकी मां यहीं दफन है। बीबी आमिना जब अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला की खबर पे गई थी, ग्रेव पे गई थी, जनाब अब्दुल्ला जब इस्लाम नहीं आया था जाहिरी तौर पे, जनाब अब्दुल्ला की ग्रेव, आपकी डेथ, मैंने रिजवी के मजलिसों में डिटेल में बोला, मैं डिटेल में नहीं जा रहा यहां पे, एक खाली वर्ड बोल रहा कि जनाब अब्दुल्ला की जो वफात हुई थी वो वहां हुई थी मदीने में। जब आप एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे वहीं पे आप बीमार हुए, डेथ हो गई, और उस वक्त बीबी आमिना प्रेग्नेंट थी रसूलुल्लाह के साथ, और रसूलुल्लाह पेट में थे, चंद महीनों की प्रेगनेंसी थी, 4-5-6 months की। उसके बाद बीबी आमिना भी साथ थे अपने शोहर के, बीबी आमिना वापस मक्का आ गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे रसूल के ग्रैंडफादर थे उनके घर में नहीं, फिर सरकार की विलादत हुई। सरकार की विलादत के बाद जब अल्लाह के रसूल का सिन 3 या 4 साल का था, या बाज़ रिवायतों में 6 साल का था, रिवायतों में इख्तलाफ है, वो बहस में मैं नहीं जाता, तो उस वक्त बीबी आमिना अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला की ज्यारत को गई थी, खबर की ज्यारत। अगर खबर पे जाना हराम होता तो रसूल की माँ नहीं जाती। अरे यार, ये आज की तारीख, पूरी हिस्ट्री से पूछो, हिस्ट्री से पूछो बीबी आमिना की वफात कैसे हुई। इन्हें रसूल की माँ तो जाए रसूलुल्लाह के बाबा की लहद पे, और मुसलमान बोले कि रसूल की लहद पे भी मत जाओ इसलिए कि ये हराम है। ये सब नया मजहब है ना, ये 100-150 साल की शरीयत है, रसूल की शरीयत 1400 साल की है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, मैंने बहुत 2 जुमले में पूरी हिस्ट्री बोली है कि ये जो मजहब है, ये जो बिलीव है, ये जो बिलीव के साथ ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इनकी भी इनकी शरीयत 100-150 साल पुरानी है। इन्हें आप सोचो रसूल की शरीयत को पीछे कर दिया, अपनी 150 साल की शरीयत को पूरी दुनिया में लागू कर दिया। हाँ, तो बीवी आमिना अपने शोहर की खबर की ज्यारत को गई थी, तो वहीं पे आपकी डेथ हुई अबुवा। तो जनाबे इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम भी अबुवा में ही पैदा हुए, उसी जगह पे पैदा, उसी सिटी में। आपकी विलादत वहां हुई और आपकी शहादत बगदाद में हुई, बगदाद में शहादत हुई, और शहादत के बाद आपका ताबूत काजिमैन लेकर आए। ये थोड़ा सा मैं आपको स्केच खींचा उनकी माँ। अच्छा, उनकी वालिदा का नाम क्या है? वालिद तो छठे इमाम है, सातवें इमाम के, और आपकी माँ का नाम बीबी हमीदा खातून, उम्मे हमीदा भी बोलते हैं, हमीदा खातून। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी थी, छठे इमाम की वाइफ है, सातवें इमाम की मदर है, सेवेंथ इमाम की मदर है, और हमारे छठे इमाम की वाइफ है। बहुत ही पायस खातून है। अब इनके ऊपर पूरी मैं एक मजलिस पढ़ सकता, इतने इनके वाकयात जो इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड शियाइज्म, टुवर्ड इस्लाम। बीबी हमीदा खातून, और ये मक्के में मदीने में आपकी विलादत के वक्त ये वहीं थी छठे इमाम के साथ, छठे इमाम की शहादत भी मदीने में हुई। बीबी हमीदा खातून के कई बच्चे हैं, छठे इमाम के 18 या 19 लड़कियां थी और 17-18 बेटे थे, लगभग 34-35 आपकी औलाद थी। और सातवें इमाम जो है वो थर्ड सन थे, पहले सन का नाम था इस्माइल, जिससे ये फिर ये जो रिलीजन चला, मैं बहुत बंद अल्फाज में कल बोलूंगा कि वो रिलीजन क्या है, आज भी वो रिलीजन है, वो खाम है, कल की मजलिस में सुनना, इसलिए कि मैं आज छेड़ना नहीं चाहता, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, अभी मसायब है। तो कल मैं आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रहा कि अगर 9 बजे आप आ जाए, कल परसों तरसों और सैटरडे संडे मंडे यहाँ पे न्याज का इंतजाम भी है, खाना भी है, मजलिस के बाद 3 दिन यहाँ न्याज होगी, कल नहीं है। डोंट टेल मी कि बाबा आपने ऐलान किया, हम लोग मैं परसों का ऐलान कर रहा। तो बहरहाल न्याज न्याज है, लेकिन अगर 9 बजे आ जाए तो एटलीस्ट आई गेट 1 hour 15 minutes, मैं 10:15 पे खत्म कर रहा मजलिस, तो कम अज कम मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर सकूंगा, वरना मैं सिर्फ स्केच खींच रहा, मैं पहुंच ही नहीं सकूंगा। आप देख रहे हैं कि इतनी हमारी इतनी बड़ी हिस्ट्री। तो एनी तो सात छठे इमाम के ये फर्ज, ये थर्ड सन है हमारे इमाम इमाम मूसे का, जो पहले सन का नाम है इस्माइल, जिससे ये फिरका चला, इस्माइली फिरका, जितने ये लोग हैं ना, कल इनकी हिस्ट्री सुनना। जनाब इस्माइल छठे इमाम के जमाने में आपकी डेथ हो गई थी, और अबवा से आपकी बॉडी को छठे इमाम जन्नतुल बकी लेकर आए। अल्लाह जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करें और जन्नतुल बकी पे साया कर दे तू। वहां पे लेकर आए, लेकर आकर वहां दफन किया। कैसे दफन किया? कॉफिन में से कफन को खोला, चेहरा बताया पूरे मुसलमानों को कि देखो मेरा बेटा इस्माइल की डेथ हो गई, छठे इमाम ने किया था। उसके बाद जनाब इस्माइल, तो इनका बेटा था मोहम्मद इब्ने इस्माइल, मोहम्मद इब्ने इस्माइल, उससे ये रिलीजन चला। इसकी हिस्ट्री कल की मजलिस में आएगी, कल की मजलिस पूरी मजलिस इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी पे होगी, कि हम जो काज़िम बन जाते हो, आप यकीन करो कल अगर आपने इमाम के वो हालात सुने, और उस इसलिए कि ये एक इमाम ऐसा है, हमारा 12 इमामों में हर इमाम बाबुल हवाइज है। इमाम अली मुश्किल कुशा है, बाबुल हवाइज है। इमाम हसन ले लो, इमाम हुसैन ले लो, या अल्लाह का रसूल ले लो, या बीबी जहरा ले लो, पूरे 14 मासूमीन में ये एक इमाम ऐसा है कि जिसको ये टाइटल दिया गया कि मुसब बाबुल हवाइज। आज भी अल्लाह काजमैन में हमको बार बार जाना नसीब करे, काजमैन पे ऊपर लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेका या बाबुल हवाइज। वही तो अफसोस से मैं बोल रहा कि बाबुल हवाइज तुम्हारे पास है, यह खानदान अहले बैत का दूसरा बाबुल हवाइज है, पहला बाबुल हवाइज मौला अब्बास है, लेकिन इमामों में यह पहला बाबुल हवाइज। हमारा हर इमाम बाबुल हवाइज है, लेकिन इस इमाम को कहा जाता, इनके रोजे पे भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा कल। इसलिए और अफसोस ये कि वी जस्ट गो एक फ्लाइंग विजिट करते, 2 घंटे के लिए गए, दोनों इमामों को सलाम किया, काफिले वाले बोले चलो चलो चलो। ये ज्यारत नहीं होती, ज्यारत मारिफत के साथ करो। कल पूरी डिटेल सुनना, उसके बाद काजमैन में एक रात गुजारना, 1 night यू हैव टू स्पेंड इन काजमैन, 2 इमामों से मुलाकात। तुम यकीन करो, तुम काजमैन के रोजे से बाहर नहीं आओगे, तुम्हारी हाजात पूरे होंगे। इसलिए कि ये बाबुल हवाइज की बारगाह है, और तुम कोशिश करो उनके कुछ आमाल, 7वें इमाम के कुछ आमाल हैं जो हम लोग हर साल जब जाते हैं अल मुंतजर के थ्रू, आप पूछ लेना जो लोग मेरे साथ गए, हम लोग वहां पे बैठ के जमजम होटल में डाइनिंग हॉल में बैठ के सामने रोजे नजर आते, हम लोग बैठ के वो अमल करते, वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमल है 7वें इमाम की बारगाह में हदिया करने का। इंशाल्लाह इसकी डिटेल कल बताऊंगा। तो आप सोचो, मेरी ख्वाहिश यह है, मेरी मैंने ये टॉपिक इसलिए इस साल को ली कि हमारे पास थोड़ी सी बेदारी आना, हमारे पास थोड़ी सी अवेयरनेस आना, आके अब जब तुम ज्यारत पे जाना तो एक एक दरवाजे पे दोस्तों, जैसा बॉम्बे से खाली हाथ जा रहे वैसी ज्यारत करके खाली एम्प्टी हैंड्स नहीं आना, बल्कि हर दरवाजे पे जाके तुम मांगो, मांग के देखो। ये उन लोगों की बारगाहें हैं कि जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया, ये अल्लाह के महबूब तरीन बंदे कि जिसकी तरफ से दीन भी बचा। इन्हें आप सोचो, करबला जाके खाली हाथ आए, नजफ अशरफ जाके खाली हाथ आए, काजमैन और सामरा जाके खाली हाथ आए, तो क्या फिर दुनिया में कोई और जगह है कि जहां तुम्हारी दुआ कबूल होगी? वेरी सैड, अफसोस। रिलैक्स है, रिलैक्स है, आप तो बेचैन हो जाना, बेचैन हो जाना कि यार व्हाट्स हैपनिंग, आई एम स्पेंडिंग 80, 90, 100,000, 200,000, 300,000 एंड आई एम गोइंग एंड मीटिंग इमाम अली एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। दर्द हो रहा है यहां पे कि करबला जाके खाली हाथ आ रहा, कासिमन जाके खाली हाथ आ रहा, दुनिया ले रही, व्हाई नॉट यू? बस मेरा टाइम हो गया। 7वें इमाम के नाम पे एक बाबा से बलन सलवात पढ़ो। एक और पढ़ लीजिए हवाल। एक घंटा 5 मिनट की मजलिस हो गई, 10:15 बजे मुझे उतरना है 10:15 पे, कल इंशाल्लाह वही 9 बजे। कल से वीकेंड भी शुरू हो रहा, फ्राइडे है, प्लीज़ 9 बजे आ जाओ। तुम मुझे, मेरे पास 1 hour 15 minutes नहीं है कि एटलीस्ट आई कैन से आई कैन टॉक समथिंग अबाउट इमाम इंशाल्लाह। ये वो इमाम है दोस्तों जिस इमाम का मैं जिक्र कर रहा, 7वां इमाम। ये एक वाहिद इमाम हमारा ऐसा है कि 14 साल कैद में रहे, 14 ईयर्स तक आप जिंदान में थे। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोला और आपने सुन लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 14 साल आपकी जबान पर एक ही जुमला रहता था, हाय दादी जैनब, हाय दादी जैनब। लोगों ने पूछा तो कहा कि मेरी दादी, मेरी मजलूम दादी भी कैद में थी। ये वो वाहिद इमाम है कि जिसके लाशे को 3 दिन तक बगदाद के पुल पे रखा गया था। बड़ी आसानी से मैं बोल रहा और आप आसानी से सुन रहे हो, 3 दिन तक बगदाद के ब्रिज पे आपका ताबूत रख दिया गया था, कोई दफन करने वाला नहीं था। उसके बाद आपकी शहादत के बाद भी आपकी बॉडी के ऊपर हथकड़ी लगी हुई थी, बेड़ी लगी हुई थी, मेरा मजलूम इमाम मुसब न जाफर। लेकिन 3 दिन के बाद बड़ी शान से इमाम का ताबूत उठा और काजमैन में ला के दफन किया गया। मैं हाथ जोड़ के यही बोलता, मौला बेशक जुल्म अजीम हुआ, 3 दिन तक आपका ताबूत बगदाद के पुल पे रखा रहा, लेकिन 3 दिन के बाद बड़ी शान से आपका ताबूत उठा। मैं क्या करूं करबला के उस शहीद को कि जिसका लाशा घोड़ों से रौन दिया गया। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, कि जो ये तड़प के बहन कह रही थी कि नाना ये आपका हुसैन है नाना, सिर्फ मौला हुसैन की 3 दिन के बाद भी सिर्फ बनी असद के कुछ लोग थे और मेरा चौथा इमाम था कि जो बाबा को दफन कर रहा था। दफन करने के बाद हुसैन के सीने पे अली असगर को रखा, हुसैन के पैंती उस शहीद को रखा कि जिसकी आवाज़ पे हुसैन ठोकरें खाता हुआ जा रहा था। आप समझ गए कि वो कौन सा शहीद था। अजीज़ो ये वो शहीद है कि लैला कहती है कि मैंने जब हुसैन को देखा चेहरा सुर्ख हो रहा तो मैंने हाथों को जोड़ के कहा कि मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी, तो कहा लैला तुम्हारा बेटा प्यासा है, भूखा है, उसके सामने एक नामी पहलवान आया है। लैला तुम दुआ करो कि अली अकबर कामयाब हो जाए। अजीज़ो जब भी कोई दुआ रुके तो जनाब लैला का वास्ता दे के दुआ मांगो, उस दुआ का वास्ता दे के कि बीबी लैला खेमे के अंदर आई, ज़मीन पे बैठ गई, बालों को परेशान किया, बीबियों को जमा किया, हाथों को उठा के कहा कि याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरा यूसुफ अली अकबर को मुझसे मिला दे। अली अकबर व माँ की दुआ कबूल हुई, शहज़ादा वापस आया, आके एक अजीब जुमला कहा, कहा बाबा प्यास मारे डालती है बाबा। हुसैन ने कहा मेरे लाल अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो बेटा। शहजादे ने जबान दी और फौरन पीछे हट गए, कहने लगे बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा जाओ तुम्हारे दादा तुमको सैराब करेंगे। शहजादा मैदान की तरफ चला, जब चला तो हुसैन ने पलट कर माँ से कहा लैला से कि लैला अब दुआ नहीं करना अली अकबर की वापसी की। शहजादा मैदान में आया, लैला कहती है कि मैं हुसैन के चेहरे को देख रही थी कि कहीं मेरे बेटे पे कोई मुसीबत आएगी तो बाप का दिल है ज़रूर तड़प जाएंगे। अजीज़ो वही हुआ। लैला कहती है कि मैंने देखा कि हुसैन के चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ, इतना बदला, इतनी सुर्खी हुई कि चेहरा रेड हो गया। तो लैला ने हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी। हुसैन ने पलट कर माँ से कहा लैला शुक्र करो कुर्बानी कबूल हो गई, अभी अली अकबर की आवाज आई, अब जो हुसैन मैदान में चले कभी उठते जाते थे बैठते जाते थे एक ही जुमला जबान पे था कि अली अकबर बाबा को अब कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा अपनी आवाज दे दो। वलदी हुसैन किधर आए, जब अली अकबर तक पहुंचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए, जवान बेटा एड़िया लगा रहा था। हुसैन ने अपने आप को खड़े कद से जमीन पे गिरा दिया, अली अकबर के रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वलदी हुसैन आया है बेटा। अली अकबर का जवाब नहीं आया, इसी तरह रो कि आज लैला तुमको दुआ दे, लैला तुमको दुआ दे, आज लैला से मांग लो। ये वो बीबी है कि जिसके 18 साल का बच्चा शहीद हो गया। अजीज़ो हुसैन ने अली अकबर के शाने को हिला के कहा कि बेटा उठो बाबा आया है। जवाब नहीं मिला, हुसैन की गुर्बत मेराज तक चली गई, अली अकबर के पहलू में लेट गए, लेट के हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का बेटा है। बस दोस्तों उसके बाद अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा। हुसैन ने देखा कि शहजादे ने दोनों हाथ सीने पे रखे, हटाना चाहा। अली अकबर जानते कि मेरा बाबा बिल्कुल अकेला है, मेरा बाबा मेरे सीने का जख्म नहीं देख सकता। हुसैन ने फिर रख हटाना चाहा, फिर अली अकबर ने रख लिया। तीसरी मर्तबा हुसैन ने जोर देकर हटाया, अब जो कलेजे पे इस बर्छी को देखा, हुसैन का कलेजा फट गया, नजफ का रुख किया, या अली कह के उस आस्तीन को उल्टी और या अली कह के बर्छी को निकाल दिया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसी तरह पुरसा, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, सिर्फ 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा, 2 मिनट में मौला तुमको एक एक आंसू का अजर दे, बीबी लैला तुम्हारी दुआ को कबूल करे। बस दोस्तों, अब तक आपने हुसैन की मुसीबत सुनी ना, अब उस माँ की मुसीबत सुन लो कि जिसने 18 साल अली अकबर को पाला है। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला जा रहा था तो लैला ने ऊन की बुलंदी से अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा, तो माँ ने ऊन की बुलंदी से कहा, मेरे लाल अली अकबर, आज के बाद तेरी माँ कभी साये में नहीं बैठेगी बेटा, मेरा बेटे का लाशा धूप में पड़ा हुआ। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, एक मिनट में खत्म कर रहा। जब यह काफिला जा रहा था एक ऐसी बस्ती से गुजरा कि जहां गैर मजहब की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, उन औरतों ने जब काफिले को देखा कि नैजों पे सर है, ऊन पे बीबियां हैं, एक औरत ने अली अकबर के सर को जब देखा, हुसैन के सर को देखा, खासिमा ओनो मोहम्मद अली असगर के, इन सरों के दरमियान औरतों की निगाह अली अकबर के सर पे पड़ी, तो एक औरत अपने साथियों को छोड़कर अली अकबर का सर जिस नैजे पे था आगे खड़ी हो गई, गौर से देखने लगी, देख के अपने औरतों को अपने साथियों को बुलाया, कहा मैं एक दुआ करती हूं तुम आमीन कहना। बस मजलिस खत्म हो गई दोस्तों, उस माँ की तड़प देखो। उस औरत ने हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार, जब ये जवान मरा हो, खुदा करे इसकी माँ दुनिया में जिंदा ना हो, बस ये सुनना था। लैला ने कहा तू बद्दुआ क्यों कर रही? कहा मैं बद्दुआ नहीं कर रही, मैं ये कह रही जब हम नहीं देख सकते तो माँ ने कैसे देखा होगा। उस वक्त लैला ने कूफे में कहा, अरे मेरा 18 बरस का लाल था, शादी के अरमान थे, मेरे बेटे का लाशा आया, मैं देखती रही, मेरा घर उजड़ गया।